नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से अपने वचन को हमें बताने का प्रयत्न किया, और हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया, जो आज मेरे और आपके जीवन के आंधी तूफान को भी शांत कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और उससे सहायता मांगें। हमारे दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सके। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हम विनती करते हैं कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए ताकि जो वचन आज हम सीखते हैं निश्चित रूप से यह हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सके। और होने दे प्रभु कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए और आपके उन महान शांति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप आशीष प्रदान करें, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंता में हैं, जो तकलीफ और परेशानी में हैं, आप उनकी सुधि लें, उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम मार्कुस रचित सुसमाचार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में आते हैं। अध्ययन के लिए हर एक अध्याय महत्वपूर्ण ही होता है, परंतु यह अध्याय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें तीन आश्चर्य कर्मों का उल्लेख है और तीनों आश्चर्य कर्म विशिष्ट हैं जो केवल किसी सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व के द्वारा ही किए जा सकते हैं। इसी कारण मैं इस अध्याय को विशेष महत्व देता हूँ। मित्रों, हमने मत्ती के अध्ययन में और मार्कुस के आरंभ में दुष्ट आत्माओं के विषय अपना विचार स्थापित किया था कि हम आगे चलकर इसे देखेंगे। यहाँ वह समय है कि हम इस विषय पर ध्यान दें। मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। मित्रों, यीशु ने गलील सागर के दूसरे तट पर दृष्टांतों के साथ शिक्षा दी थी। अब वह थक गया था, अतः उसने गलील सागर पार किया कि विश्राम करे। वह क्षेत्र गिरासेनियों का देश कहलाता था जो यर्दन नदी का पूर्वी क्षेत्र था। यह क्षेत्र गाद के गोत्र को दिया गया था और गाद वंशियों ने गलत क्षेत्र चुन लिया था और अब वे सुअरों का व्यापार कर रहे थे। देखिए, आपका आरंभ यदि परमेश्वर से दूर रहकर होता है तो आप परमेश्वर से अधिकाधिक दूर होते जाते हैं। मार्कुस 5:2 में हम पढ़ते हैं, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य में अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह एक मनुष्य था, उसकी दशा दयनीय थी। और किस बात पर यीशु का ध्यान गया? यहाँ पर ध्यान दे, उसके मनुष्य होने पर उसकी दुर्दशा का उल्लेख यहाँ पर हम पाते हैं मार्कुस 5:3-5 में लिखा है, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मित्रों, यहाँ पर देखिए कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य की कैसी दुर्दशा होती है। उसका निवास स्थान कब्रों में था जिसे अशुद्ध स्थान माना जाता था। वहाँ कहीं कहीं मुर्दे खुले पड़े रहते थे। उस व्यक्ति को मनुष्यों की संगति अच्छी नहीं लगती थी। मत्ती के सुसमाचार के वृत्तांत में एक और ऐसे ही व्यक्ति का उल्लेख है, परंतु मार्कुस और लूका केवल इसी एक व्यक्ति का उल्लेख करते हैं। परंतु वह व्यक्ति न तो इसका साथी था और न ही मुर्दे के साथ वास करता था। उसमें असामान्य शक्ति थी। अब यहाँ ध्यान दे कि असामान्य शक्ति सदैव परमेश्वर का वरदान नहीं होती है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि वह पार्श्विक था, उसे वश में करना असंभव था। वह अभागा मनुष्य था, उसने स्वयं को क्षतिग्रस्त किया हुआ था। वह दया का पात्र था, मानव स्तर पर वह असाध्य था। वह केवल चिल्लाता रहता था क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसकी आवाज बंद कर दी थी। कैसी भयानक दशा है मित्रों, केवल दुष्ट आत्मा के कारण ये सब कुछ हो रहा था। हम आगे मार्कुस 5:6-8 में पढ़ते हैं, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। मित्रों, उसने यीशु को प्रणाम किया, दुष्ट आत्मा ने नहीं। वह यीशु को देखकर भयातुर हो गया था और उसमें आत्मिक दैविधि भाव था। कहने का मतलब है कि जो कभी तो मनुष्य और कभी आत्मा का व्यवहार करता था। पद 7 में यह स्पष्ट हो जाता है, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? मित्रों, वह अभागा दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। तब हम आगे मार्कुस 5 उसके 9 पद पढ़ते हैं। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मित्रों, उसका उत्तर स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। यह व्याकरण की गलती नहीं है। उसने अपना नाम बताने का प्रयास किया, परंतु दुष्ट आत्माओं ने कहा कि वे अनेक हैं, अर्थात सेना है। तब हम मार्कुस 5 उसके 10 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं, और उसने उनसे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूरों को एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मित्रों, यह एक बड़ी विचित्र घटना है। दुष्ट आत्मा का निवेदन बड़ा अद्भुत था। उन्होंने अग्निकुंड की अपेक्षा सूअरों में जाना उचित समझा। कुछ लोग यीशु की इस अनुमति की आलोचना करते हैं कि एक दयालु यीशु कैसे किसी के सूअरों को नाश करवा सकता है। मैं एक दिन अपने स्कूल के साथी के साथ नाश्ता कर रहा था, तब उसने अपने विचारों के पक्ष में यही तर्क दिया कि यीशु कैसे किसी के व्यवसाय को हानि पहुंचा सकता है। यह तो बहुत ही बुरा काम था। इसका वाद यह है कि सबसे पहले तो इन लोगों को सुअर पालना व्यवस्था में मना था। फिर मैंने कहा कि दुष्ट आत्माओं द्वारा नाश किए गए सुअर नूह के युग में सुअरों के सर्वनाश की तुलना में बहुत ही कम थे। मित्रों, अब मैं दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहला है, मार्कुस ही नहीं संपूर्ण धर्मशास्त्र दुष्ट आत्माओं की वास्तविकता की गवाही देता है। जो धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उन्हें दुष्ट आत्माओं की वास्तविकता को भी स्वीकार करना होगा। दूसरी है, वे यीशु के सेवा काल में विशेष रूप से प्रकट थी, परंतु उस समय के साथ समाप्त नहीं हो गई। आज भी उनका अपना राज्य है। और तीसरी बात है, मनुष्य में अंतर्वास करने का उनका अपना ही कारण है। वे मनुष्यों के माध्यम से अपना दुष्ट व्यवहार प्रकट करना चाहती हैं। वे अत्यधिक अशांत स्वभाव की होती हैं। इस संदर्भ में आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा, जिसे हम लूका 11 और 24 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मित्रों, क्या यह दुष्ट व्यवहार नहीं? क्या दुष्ट मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करता है? अपने दुष्ट व्यवहार को व्यक्त करने के लिए दुष्ट परेशान रहता है। अच्छी आत्मा मनुष्य में अंतर्वास करने का यत्न नहीं करती है। केवल पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासियों में अंतर्वास करता है। जिस प्रकार वह विश्वासियों में अंतर्वास करता है, उसी प्रकार दुष्ट आत्मा अविश्वासियों में वास करती है। दुष्ट आत्मा विश्वासियों में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि यहूना 4 अध्याय के 4 पद में स्पष्ट लिखा है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अतः परमेश्वर की संतान दुष्ट आत्मा ग्रस्त नहीं हो सकती है। और चौथी बात है, इस घटना में रोचक बात यह है कि दुष्ट आत्माओं ने अग्निकुंड की अपेक्षा सुअरों में चले जाना उचित समझा। पांचवी बात, उन्हें दुष्ट आत्मा कहना उचित होगा, शैतान नहीं। उनके स्वभाव के कारण उन्हें अशुद्ध आत्माएं भी कहते हैं। और छठवां है, धर्मशास्त्र में उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है, अतः यदि मैं कुछ कहूं तो वह कल्पना मात्र ही होगा। सातवां, ऐसा प्रतीत होता है कि वे असंख्य हैं। आठवां, वे सब शैतान के नियंत्रण में रहती हैं। मुझे कल्पना नहीं करना चाहिए जैसा मैंने कुछ कहा है, परंतु मेरे विचार में जब शैतान का पतन हुआ था तब ये उसके अनुयायी स्वर्गदूत थे। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नवा है, उनका उद्देश्य है कि वे मनुष्य का विनाश लाएं। वे निश्चय ही शैतान की योजनाओं के अधीन कार्यरत हैं। दसवां, आज शैतान की खुल्लम खुला उपासना की जा रही है, और उसके उपासक कहते हैं कि उन्हें सत्य का प्रकाशन प्राप्त होता है। शैतान अपने उपासकों को सत्य का प्रकाशन प्रदान कर सकता है, परंतु वह कैसा सत्य है आप समझ सकते हैं। ग्यारहवां है, हमारे सीखने के लिए जो सबसे मुख्य सबक है वह यह है कि यीशु को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। मित्रों, विश्वासियों को दुष्ट आत्माओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, या उनके विषय कोई अंधविश्वास या डरावनी धारणा में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वे आपको परेशान करती हैं, तो प्रभु यीशु से याचना करें कि वह आपको उनसे बचा ले। वे उसके नाम से निकाली जा चुकी हैं और उनसे भयभीत होना प्रभु यीशु में विश्वास रखने की कमी है। सदा स्मरण रखें कि यीशु को उन पर अधिकार है। जोसेफ ओंडेल एक कवि हुए हैं, उन्होंने इस विषय पर एक कविता लिखी है। आपको याद होगा कि गिरासेनियों ने यीशु से चले जाने का आग्रह किया था, वे यीशु की अपेक्षा सूरों को अपनाना चाहते थे। यह एक अच्छा आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है, क्योंकि आज भी मनुष्य यीशु की अपेक्षा अनेक संसारिक बातों को स्वीकार करता है, अर्थात स्वीकार करना पसंद करता है, जो सुअर पालन करने के तुल्य ही है। अतः कविता का सारांश है कि प्रभु यीशु मनुष्य से प्रेम करता है, उन्हें आशा और कोमलता प्रदान करता है जो स्वर्गिक है। वह द्वार पर खड़ा खटखटाता है, परंतु हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते। हमारी धन दौलत उसके लिए द्वार बंद करते हैं। वह बल का प्रयोग नहीं करता है, परंतु खड़ा हुआ प्रतीक्षा करता है कि द्वार खोला जाए, परंतु हमें मसीह नहीं सुअर चाहिए। मित्रों, अगला आश्चर्य कर्म याइर की पुत्री को जीवन दान देने के समान ही है। मरकुस 5 उसके 21 से 28 पद में हम आगे पढ़ते हैं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे पर था। और याइर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मित्रों, यीशु लौटकर अपने निवास स्थान पर आ जाता है और लूका एक वैद्य था और वह लिखता है कि उसका रोग असाध्य था। मरकुस लिखता है कि उसने अनेक वैद्यों से उपचार कराया था जिसमें उसका सब पैसा समाप्त हो गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उपचार करवाना उस युग में भी आर्थिक संकट ही था। तब हम मरकुस 5 उसके 29 से 31 पद में पढ़ते हैं, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। मित्रों, शिष्यों के लिए यीशु का यह प्रश्न बड़ा विचित्र था, क्योंकि एक बड़ी भीड़ उसे छू रही थी, परंतु यह स्पर्श निरोगीकरण के लिए विश्वास का स्पर्श था। आज की परिस्थिति में ऐसी ही है। आज अनेक जन यीशु का नाम लेते हैं और मनुष्यों में वे बड़े धर्मी और आत्मिक माने जाते हैं। मित्रों, निस्संदेह वे धर्मी हैं, परंतु क्या उन्होंने यीशु को भीड़ की नाई स्पर्श किया है या इस स्त्री की नाई जो विश्वास की परिपूर्णता में स्पर्श की? यहां पर दो बातें हैं जो मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है। हम मरकुस 5 उसके 32 से 34 पद में आगे पढ़ते हैं। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मित्रों, उसका रोग 12 वर्ष से उसे कष्ट दे रहा था। याइर की पुत्री भी 12 वर्ष की थी। यहाँ 12 वर्ष के कष्टों का अंत है और वहां 12 वर्ष की ज्योति का अंत है। अब उस बालिका का पिता जब देखता है कि यीशु उस स्त्री से बातें कर रहा है तो निश्चय ही सोच रहा होगा, ओह, वह जल्दी क्यों नहीं करता, मेरी पुत्री तो मरने पर है, यदि शीघ्र ही घर नहीं पहुंचा तो वह निश्चय ही मर जाएगी। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर विलंब कर रहा था। अभी यीशु ने उस स्त्री को चंगा किया ही था कि एक सेवक आकर याइर के कान में कुछ कहता है, जिसे हम मरकुस 5 35 से 40 में पढ़ते हैं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की को माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मित्रों, तलिता कूमी आरामी भाषा है जिसे वह बालिका समझती थी या उसकी मातृभाषा थी। इसका अनुवाद है, छोटे मेमने जाग। यह अति मधुर वचन है। यीशु ने एक युवक को, जो विधवा का पुत्र था, एक वरिष्ठ नागरिक लाजर को भी वचन कहकर ही जिलाया था। यह बालिका उन नाबालिकों का प्रतिनिधित्व करती है जो लेखादेही की आयु में नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से अनेक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्र या पुत्री को इस आयु में खो दिया है। एक दिन यीशु उनसे भी यही कहेगा, हे छोटे मेमने जाग। तब वे कब्र में से जाग उठेंगे और तब उस नई देह में हमारी संतान फिर हमारे साथ होंगे। यह कैसी मनोहर एवं अद्भुत बात होगी, यह उसके सामर्थ्य का प्रदर्शन है। मरकुस 5:42-43 पद में हम पढ़ते हैं, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। मित्रों, यह कैसा प्रयोगात्मक कार्य है। यदि किसी बालक या बालिका को जगाया जाए तो वे खाना मांगते हैं, इसलिए यीशु ने कहा कि उसे भोजन दिया जाए। ये तीन महान आश्चर्य कर्म मेरे विचार में मरकुस के सुसमाचार के महान संदेश का प्रदर्शन है। यीशु परमेश्वर का सेवक है जिसके पास परमेश्वर का सामर्थ है। वह एक कर्मठ व्यक्ति है जो सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया था कि अपना जीवन ही अनेकों की छुड़ौती के लिए दे दे। इस अध्याय में हमने उसे तीन महान आश्चर्य कर्म करते देखा है। उसने गिरासेनियों के देश में एक युवक में से दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने रक्तस्राव ग्रस्त महिला को चंगा किया और यायर की पुत्री को जीवन दान दिया जो मर गई थी। मेरे मित्र, यहाँ पर हम तीन महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय में किए हैं, और आज मेरे लिए और आपके लिए भी यह संभव है क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे भी प्रेम करते हैं। यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि वह आपके अंदर से भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से थरथराती और कांपती हैं। और इतना ही नहीं, उस रक्तस्राव महिला को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान किया और वह आपके जीवन की उन बीमारियों से भी आपको चंगाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने याइर की बेटी को भी जीवित किया। वो परमेश्वर हैं जो मृतक को भी जीवित कर सकते हैं। मेरे मित्र, यदि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आप भी आइए, अपनी समस्याओं को लेकर के आइए और निश्चय जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उन महान कार्यों को आज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि वह वही प्रभु है जो कभी बदलता नहीं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा निश्चित रूप से आपको आशीष मिला है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा से बहुत ऐसे आशीष दे और सहायता करे कि आप उसके प्रेम में, उसके भय में अपने जीवन को बिता सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, नहीं एक भी नहीं। रब को जो चाहता हो, नहीं एक भी नहीं। करता हो जो भलाई, करता हो जो भलाई, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। कोई उसके जैसा, नहीं एक भी नहीं। चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा, नहीं एक भी नहीं। जो अपनी जान दे दे, नहीं एक भी नहीं। सबके गुनाह ले ले, सबके गुनाह ले ले, नहीं एक भी नहीं।
तो कौन सा ऐसा नाम है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कि जिस नाम के वसीले से हमें नजात मिलती हो।
हर पाप से छुड़ाता, अपना को मैं